نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سيقول پارا نمبر 2 سورة بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 252 تک ہم اس بارے میں سورة البقرہ کو کور کریں گے. ابھی تک جو چیز ہم نے پڑھی مجھے امید ہے کہ سب سننے والوں کے لیے وہ کلیئر ہوگی. ہم نے سورة بقرہ کے سٹارٹ سے لے کے پہلے پارے کے اینڈ تک صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت تک جو پیغام لیا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کو چنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. اس پورے بارے میں دو بنیادی چیزیں آپ کے میرے یاد رکھنے کی، ایک قصہ ہے آدم علیہ السلام، انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی دنیا میں رول کون کرے گا، دنیا میں ترقی کون کرے گا، اس کے پوائنٹس سے. اور پھر پارے کی تکمیل سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جس کے ساتھ تھا انی جائل للناس امامہ. امامت اور خلافت کا فرق ہم نے دیکھا کہ جب مسلمان دنیا میں بھی کام کریں گے، محنت کریں گے، ترقی کریں گے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا بھی امام بنائے گا اور آخرت کا بھی امام بنائے گا. جب مسلمان یہ کام چھوڑ دیں گے تو جو بھی دنیاوی علوم میں محنت کرے گا، ریسرچ کرے گا، تحقیقات کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں سپر پاور بنا دیں گے. پھر ہم نے پہلے پارے میں دیکھا کہ تین بار یا بنی اسرائیل کے لقب سے ماضی کے مسلمانوں کو دعوت بھی دی گئی، وارن بھی کیا گیا کہ اگر تم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نہ جوڑا تو ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے. آج سے اب پارا نمبر 2 میں تحویل قبلہ کا حکم اصل میں تحویل امت کی علامت بن کے ہمارے سامنے. جب ایک حکومت کام نہیں کرتی تو اچھے لوگ اس کو پہلے تو وارننگ دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، بائے ہک اور بائے کروک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ خود کر سکتے ہیں. وہ لوگوں کو افراد کی صورت میں بھی اور اقوام کی صورت میں، یعنی بینگ اے پرسن اینڈ بینگ اے نیشن، موقع دیتے رہتے ہیں. جب کوئی اپنے آپ کو پروو کر دے تو پھر اس کو کوئی نہیں ہٹاتا. اسلام میں لیڈرشپ مرتے دم تک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دن تک خلیفہ تھے. کوئی ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے کہ آپ اتنے سال کے بعد جبکہ کوئی کام کرنا سیکھ چکا، تجربے کی دھول اس پہ پڑ چکی، تو اب اس کو ہٹا دیا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اچھا کام نہیں کرے گا تو اس کو ہٹانے میں اللہ کو بالکل دیر نہیں لگتی. لہٰذا 142 سے 145 یعنی پارے کے شروع سے لے کر آن ورڈ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ کس نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اب وہ مقام دینا ہے جو کل تک بنی اسرائیل کو ملا ہوا تھا. اور یہ اتنا زبردست حکم تھا کہ اس پہ ریئیکشن کا بہت اندیشہ تھا. تو اس سے پہلے کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آتا، اللہ نے اپنے نبی کو وارن کر دیا کہ اب آپ پہ بہت آوازیں اٹھیں گی. بالکل سمجھنے کی خاطر آپ ذہن میں رکھیے نا کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا جاتا ہے، دوسری کو لایا جاتا ہے، تو آوازیں تو اٹھتی ہیں. حسب اقتدار اور اختلاف کی باتیں تو ہمارے ملکوں سے اچھی کون جانتا ہوگا. بالکل یہ وہ ریئیکشن تھا جو اللہ نے پہلے پیش کیا. ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ قل للہ المشرق والمغرب. دیکھو قبلے کی باتیں کیا ہیں، وہ بیت اللہ ہو یا وہ بیت المقدس ہو، مشرق ہو کہ مغرب ہو، سب جہتیں اللہ کی ہیں. यानी जो लोग दीन के जाहिरी रिचुअल पे रहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत इशू बनाते हैं। आपकी मेरी लैंग्वेज में भी काम करना है, मुल्क को अच्छा चलाना है, दुनिया में एक अच्छा निज़ाम देना है, कोई भी दे ले, तुम उसको सोशलिज्म कह रहे हो, कम्युनिज्म कह रहे हो, डेमोक्रेसी कह रहे हो, खिलाफत कह रहे हो, असल तो चीज़ काम है। हमारा दीन बहसों से हटाकर काम पे तवज्जो दिलवाता है, इसलिए फरमा दिया कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इन आयात में मुसलमानों को एक मौका दिया कि अब तुम आगे आओ। जब कोई दूसरा काम कर रहा होता है तो सबको उसमें नक्स दिखते हैं, एवरीबॉडी थिंक समवन विल डू एंड नो वन हैव डन। क्या पता चला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो किबले की तब्दीली है ना, ये असल में इमामत और राहबरी की अलामत थी। बैतुल मक़दस के साथ माजी के मुसलमान खुद को जोड़ते थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स उनकी चीज़ें जो हैं वो बैतुल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली असल में एक उम्मत की तब्दीली थी, और अल्लाह के किसी ख़ास सिमत में महदूद ना होने की ये दलील है। अल्लाह सुब्हान तआला अपने वजूद के एतबार से तो सातवें आसमान पे है, लेकिन अल अलीम अल अल बसीर असमी होने के नाते उसकी सारी चीज़ें वाजे हैं। तो आपको मुझे क्या पता चला इतने हिस्से में कि किबले तब्दील जब भी होंगे आवाज़ें तो उठेंगी। एक तो वो किबला था जो हकीकत में बदला, अभी हम उसकी मजीद आयतें पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला का अंदाज़ देखिए कि पहले वजह बता के कि किबला क्यों तब्दील हो रहा है, फिर उसके बाद जो आयत आ रही है वो बड़ी अहम है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको उम्मत वसत बनाया। अभी आगे तब्दीली किबला की बातें आएंगी, लेकिन यहाँ उम्मत वसत कहकर उम्मत मुस्लिमा को बता दिया कि अब गेंद तुम्हारे हाथ में, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। अल्लाह ने वो मुकाम जो कल तक माजी के मुसलमानों को दिया हुआ था वो अब तुम्हें दे दिया। अब लो उम्मत वसत कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा। हम तो कहते हैं हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम तो उम्मत मुस्लिमा हैं, लेकिन उम्मत वसत क्या है? तो अगर आप डिक्शनरी को भी खोल लें और अहादीस को भी जमा कर लें तो लफ्ज़ वसत तीन मानों में आता है, मोतदिल उम्मत, मोतदिल कहते हैं बैलेंस्ड को। आप उर्दू में भी लफ्ज़ वसत कब कहते हैं? वसता, वास्ता, तुम वास्ता हो, मीन्स इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो मीन्स हो। इसी तरह वसत का लफ्ज़ आला उम्मत और बेहतरीन उम्मत कैसे है, ज़रा सा इसको समझ लीजिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसानियत से बराह रास्त कलाम नहीं किया, वक्त के नबी पे फरिश्ते को भेजा और हर नबी पे वही लेकर आने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वास्ता थे, एक सोर्स यूज़ किया। जिब्राइल नबी के दिल पे कुरान को नाजिल करते थे, जैसे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पिछले पारे कैंड पे क्या पढ़ा, अला कल्बी का। अब हुआ क्या कि नबी ने वो बात फिर उम्मतियों को बताई। हम सब का ईमान है कि नबी सल्लम आखिरी नबी थे, सहाबा कराम में से हर सहाबी का अकीदा बिल्कुल वाज़े था, कोई डाउट्स, कोई हैंकी पैंकी नहीं थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन का पैगाम दिया और कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की दावत दी, तो सहाबा के जहनों में ये सवाल आते थे कि अल्लाह के नबी आप तो आखिरी नबी हैं, अब क़यामत तक के जो लोग आएंगे उनको अल्लाह का पैगाम कौन देगा, उनको अल्लाह से कौन जोड़ेगा? तो उस पे आपने फरमाया कि उसको मेरी उम्मत जोड़ेगी। आज अगर ये बात मैं अपने आप को और आपको समझा सकूं तो मैं अपने आप से खुश हो जाऊं। आप भी दुआ कीजिए। ये है वो लफ्ज़ जो आज इस वक्त की उम्मत मुस्लिमा से छुटा हुआ है। हम नमाज़ें भी पढ़ते, हम रोज़े भी रखते, हज उमरा ज़कात भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हज पे जाने का शौक़ भी है, मस्जिदों में कालीन भी बिछाते हैं, तरावियां भी पढ़वाते हैं, कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ भी बनाते हैं, लेकिन हमारी नेकियां यहाँ आके रुक क्यों जाती हैं, सवाल है मेरा। आपने कभी माजी में अखबार में एक ज़रूरत रिश्ता का कॉलम देखा होगा, सोमो सलात की पाबंद बच्ची का रिश्ता दरकार है। बस हमारे यहाँ नेकी का सबसे आला मुकाम कह के कोई नमाजें पढ़े, और रोजे रखे। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो किसी लड़के या मर्द की खूबी क्या है कि वो मस्जिद में जाता है, उसकी दाढ़ी है, उसकी शलवार टखनों से ऊपर है। हम इसके ऊपर किसी को फतवा देने को तैयार हैं कि ये बस पीक पे पहुंच गया। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, इनके बगैर इससे अगला काम होगा नहीं। जैसे आप ऊपर आते हैं तो सीढ़ियाँ आती हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मंजिल तो नहीं होती। आप में से मेरे में से कोई सीढ़ी में थोड़ी देर खड़ा भी हो जाए तो दूसरों को रुकावट देगा। तो क्या पता चला मंजिल तो ये ऊपर आना था, ये हॉल था, इस खूबसूरत जगह पे बैठ के अल्लाह की बात सुनना सुनाना था। अब आप मेरी इस मिसाल को अपने पास नोट्स में एक इमेज के साथ बनाइए। उम्मते मुस्लिमा की अक्सरियत इस वक्त सीढ़ियों पे खड़ी है और आने जाने वालों का रास्ता ब्लॉक कर रही है। ना कॉल में, ना किरदार में, ना गुफ्तार में, ना अमल में वो रंग दिखता है जो सिबगत अल्लाह का रंग था, बंदगी का रंग, आजजी का रंग। और उससे भी बढ़ के लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाली बात हमने चंद गिरोहों से जोड़ दी। वो इस्लाम वाली जमात है तो वो ये काम कर ले, वो तबलीग वाले लोग हैं तो वो ये काम कर लें, और वो फला एक बड़ा मजहबी गिरोह है। और हर शहर में लोगों ने कुछ अंकल्स और कुछ आंटीज, कुछ मौलाना साहब और कुछ दर्स वाली खवातीन को सोचा हुआ है कि वो कर रहे हैं ना ये काम, बहुत है। कोई ट्रस्ट बना के कुछ काम कर रहा है जिसमें लोगों की हेल्प करता है, लेकिन लफ्ज़ उम्मते वसत मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा, इसलिए कि ये है वो काम जिसको करने से आसमान और ज़मीन से रिस्क बरसता है। ये था वो काम जो नबी की ज़िंदगी का मिशन था। इस पे बात ज़्यादा होगी फोर्थ पारे में इंशाल्लाह, लेकिन बस यहाँ एक दुआ करके आगे बढ़ जाइए। अल्लाह हमें लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दे, और ये मुकाम जिसको अपना समझ आ गया उसके जीने के और मरने के पैमाने बदल जाते हैं। खुलिन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके वो सारे पैमाने जो हैं वो बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ये तड़प लगा दे कि दूसरे हिदायत पे आ जाएं, दूसरे अल्लाह से जुड़ जाएं। और याद रखिए, दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि हमारी अपनी हिदायत भी कमज़ोर है। आज हम अपने साथ वाले को नमाज की दावत नहीं देते, हम अपने जिन मुलाजमों से सारा दिन काम लेते हैं हमें उनके किरदार की इतनी फिक्र नहीं, हम कहते हैं वो हमारे काम करें। हम कुरान सुनते हैं, हम उनको नहीं सुनने देंगे, हम कहेंगे 1-2 घंटे इनको क्यों फारिग बिठाएं। तो बात ये है कि इंसानियत का दर्द पालता है मुसलमान। वो खूबसूरत गोल्डन चेन है, अल्लाह से फरिश्ता, फरिश्ते से नबी और नबी से दुनिया। आप और मैं नबी से सल्लम और आज की इंसानियत के बीच में एक गोल्डन चेन का एक इजाफा है। अल्लाह करे कि हमें अपना ये काम समझ आ जाए। फिर ये जो किबले की तब्दीली हुई और आयत नंबर 146 तक तकरार है कि कैसे कैसे जहाँ भी हो जिधर भी हो। अब सहाबा कराम का किरदार देखिए कि जब उनको हुक्म मिला इस बात का कि तुमने किबला तब्दील करना है तो नमाज के दौरान किबला चेंज हुआ। बचपन से आप और मैं ये जुमला सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि सहाबा ने ऐन नमाज के दौरान रुकू की कैफियत में किबला बदल दिया। और एक सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किबला तब्दील होकर नमाज पढ़कर गए, किसी दूसरी मस्जिद में गए तो भी वहाँ नमाज हो रही थी, बस एक पुकार लगाई कि लोगों में गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ के आया हूँ। सबने दौराने नमाज अपना किबला बदल लिया और 180 डिग्री, यानी जहां मर्दों की सफ़े थी वहां औरतों की सफ़े आ गई। जरा सोचिए, आज ऐसे किसी काम का तसव्वुर भी है? उस वक्त सिर्फ नबी से सल्लम सादिक और अमीन नहीं थे, हर सहाबी सादिक था। अगर आज की बात होती लोग कहते पता नहीं कौन क्या छोड़ गया, पता नहीं झूठा है। सहाबा का आपस में ताल्लुक क्या था, रहमा भाई ना हो, और कहीं वो असूलों के इतने पक्के थे कि अशिद्दाउल कुफार। तो आज हम मुसलमान सोचे, अपना मुहासबा करते हैं, अगर हम नबी के दौर में होते और हमें इस तरह की इताअत और इस किस्म की बात का हुक्म मिलता तो क्या हम इसके लिए तैयार थे? फिर इसमें आप देखिए कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को जो ये बात कही कि कत नरा तकल्लुब वजही का फिस्समा, नबी के दिल की ख्वाहिश पे अल्लाह ने किबला बदल दिया। आज हमारे गले फाड़ फाड़ कर बोलने के बावजूद लोग तब्दील नहीं होते, इससे पता चलता है कि अल्लाह के हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। तो बहरहाल ये जो किबले की तब्दीली थी ना, ये एक उम्मत की तब्दीली बन गई, और अल्लाह सुबहाना ताला ने इसमें एक और बात को भी साबित किया, और वो क्या था कि यहूद की किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका किबला बैतुल्ला होगा। अब जब किबला बैतुल्ला बना तो एक और निशानी भी पूरी हो गई। जब एक और निशानी पूरी हुई तो दिल में ख्वाहिश थी कि अब ये मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनको एक नहीं, वलाइन आतैतल्लज़ीना उतुल किताबा बिकुल्ली आया, ए नबी आप इनको सारी भी निशानियां दे दें मा तबीउ किबला तक, नहीं मानेंगे, आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। क्या पता चला कि जिनको नहीं मानना होता वो नहीं मानते। जिसको भूख नहीं होती आप उसको जितने मर्जी तरीके सिखा दे, ये बना दूं ये बना दूं, नहीं खाता। बच्चे माओ के साथ नखरे करते हैं ना, भूख नहीं है। आज इंसानियत को भूख नहीं है। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत नहीं, कुरान को पढ़ने का शौक नहीं, आप उसको बुलाएंगे, आप आइए बिजी हूँ, सुबह को बुलाइए, नहीं मसरूफ है, अच्छा फिर शाम को आ जाए, नहीं अब दूसरा उजर है, अच्छा वीक डेज, अब वीकेंड। यदि वो कहते ना कि कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, तो इतनी बात के बाद आप अपने ऊपर इस चीज़ को महसूस करेंगे ज़रूर कि एक जिम्मेदारी है। अगर आपने मैंने ये दीन दूसरों तक ना पहुँचाया तो फिर आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और याद रखिए, जो दूसरों को नहीं देते ना, उनके अपनी नस्लों के पास भी नहीं रहता। आज उम्मत मुस्लिमा इस सदी में उस किनारे पे आके खड़ी हो गई कि हमारे अपने बच्चे इस्लाम से निकल रहे हैं। एक्स मुस्लिम्स, आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर। क्यों? इसलिए कि उनको इस्लाम हमने पूरा कहाँ दिया। तो मुसलमान जो उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द है ना, वो नमाज रोज़े के बाद दूसरों को नेकी की दावत देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे, आपके उस तरीके पे पहुंचता है। अब जब ये सारी बातें आपने मैंने सुनी, तो आपको मुझे आज दावत है, क्या ये आप भी अपने किबले बदलिए? आज तक की ज़िंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, आइंदा की ज़िंदगी अच्छी कर लीजिए। और इसके लिए जो दर्द मिलता है ना, वो कुरान को समझ के मिलता है। जब तक आप खुद को उम्मत वसत नहीं समझते, आप कैसे बैलेंस्ड होंगे? और आप देखिए कि इसमें मोतदिल के माने में बैलेंस्ड है। मुसलमान कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता। हाँ, वो एक्सट्रीमली लविंग हो सकता है, वो एक्सट्रीमली केयरिंग हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड रवैये। पिछली उम्मतों से टैली करें तो हमारा दीन बहुत न्यूट्रल है। फिर इसी तरह देखिए कि आला उम्मत हैं और बेहतरीन अगर उम्मत हैं तो इसका हक अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ बैठकर हम सब अपने लिए एक दुआ करें कि अल्लाह हमारी नस्लों को मुत्तकीन का इमाम बना। सूरत फुरकान में इबादुर्रहमान की दुआओं में एक दुआ अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए कि रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वज़अलना लिल्मुत्तकीन इमामा। इसके बाद अब आगे आयत 146 से 147 देखें अगर हम, तो बनी इसराइल ने जो हक को छुपाया था उस जुर्म की बात है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम। वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो तो उनको ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचान ले। इसके बावजूद इनका एक गिरोह जो है वो अलबत्ता हक को छुपाता है जबकि वो जानते हैं। तो इनको बता दो कि अल हक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस शक वालों में ना आइए। अब ये जो बातें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग ईमान ले आते, क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लेकर आए कि हक को छुपाना चाहते थे, और हक हर किस्म के शक और तरद्दुद से बालातर होता है। हक की मार्फत के बाद हक का इनकार सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की खबर दे दी कि ये लोग नबी सल्लम को पहचान गए थे। देखिए, सच जो होता है सबको अच्छा लगता है। यूनिवर्सल ट्रूथ सबके लिए यूनिवर्सल है, वो मुस्लिम के लिए भी नॉन मुस्लिम के लिए। नबी सल्लम का तो किरदार इतना प्यारा था, आपकी तो गुफ्तार इतनी प्यारी थी। नबूवत से पहले आप सादिक और अमीन कहलाते थे, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आप तो किरदार के गाजी थे, गुफ्तार के गाजी के साथ साथ, लेकिन असल बात है कि दिलों में जब तासुब आ जाता है ना, आज भी ऐसा ही है। आज दीन के नाम पर हम मुख्तलिफ फ़िरकों में, जमातों में, प्लेटफॉर्म्स में, गिरोहों में बटे हुए हैं। सिर्फ उसकी बात सुनो जो तुम्हारा है, जिसके नाम के आगे तुम्हारा स्लोगन लगा हुआ है, जो तुम्हारे नाम की स्टैंप लेके साथ फिरता है, बाकियों पीछे हो जाओ। पहले ज़हन बंद कर देते हैं ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। तो याद रखिए, हक को पहचानने के बाद अगर आप हक का इनकार करेंगे तो यही तो कुफर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को मुसलमान समझें और वहां जाकर कहीं और खड़े हों। तो बनी इसराइल का ये जुर्म आज उम्मत मुस्लिमा में भी दिखता है। हर वक्त बहसों में पड़े रहते हो, कौन हक पे, कौन ना हक, कौन मुनाफे, किसके क्या अजायम। अल्लाह कहते हैं मुकाबले का असल मैदान तो क्या है, नेकियों में सबकत करो। आयत 148 में आप देखते हैं वली कुल्लिन विच्छतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक का एक विच है। विच का लफ्ज जरा सोचे ना, फोकल पॉइंट। आज हमारी उर्दू इतनी खराब हो गई कि इंग्लिश का लफ्ज हमें अपना अपना लगता है, लेकिन उर्दू हमें मुश्किल लगती है। आपका मेरा फोकल पॉइंट क्या है? माजरत है, आज तो पूरी इंसानियत को मैं देख लूँ, मुसलमानों के भी साथ साथ, तो सेल फोन उनका फोकल पॉइंट है। नमाज में भी दिल कर रहा होता है झांक के देख लें कोई मैसेज तो नहीं आया। न्यू बॉर्न बेबी की माँ का फोकल पॉइंट वो बच्चा होता है, सोते में भी जा जाकर उठ उठ के देख रही होती है। तो फोकल पॉइंट क्या है कि जिस पे आपका चेहरा लगाओ। वज कहते चेहरे को, ये जो लफ्ज है ना, वजूहात, वजह, तौजीहात, ये भी सब इससे है। मुराद ये कि हर एक ने अपनी जिंदगी का एक सेंटर बनाया हुआ है। आप भी अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी का फोकल पॉइंट क्या है? सिर्फ खाना पीना? माजरत, हमारी बहुत सारी बहनों का फोकल पॉइंट सिर्फ किचन है, बास का बाजार है, बास का अपनी ब्यूटी है, बास का अपना फिगर है, बास का बैठकर सिर्फ किसी चैनल पे एक चिट चैट करना है। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट बनाइए, और वो क्या है? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में भाग करो। अपने हिस्से की नेकी कभी किसी को ना दो। जिंदगी का असल मकसद नेकियों में सबकत हासिल करना है। डोंट बी लेजी, डोंट बी लिथार्जिक। क्यों ढीले ढाले हो? 60-70 साल की जिंदगी में से अपने वर्क का बेहतरीन हिस्सा इंसानियत की खिदमत में लगाओ, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के बंदों के काम आओ, जो जिस तरीके से कर सकता है। इसके बरक्स आज हम अखबारें उठा लें, टॉक शोज देख लें, वीडियो क्लिप्स देख लें, एक बंदा दूसरे के खिलाफ, सियासतदान सियासतदानों के खिलाफ, एक मजहबी रहनुमा अपने खुतबे का काफ़ी हिस्सा दूसरे फिर और दूसरे मजाहब और दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इख्तलाफी उमूर में उलझने की बजाय नेकियां करने में वक्त सर्फ करो, इसलिए कि तुम दुनिया में बहुत थोड़े दिन रहोगे। इसमें से अपने लिए लफ्ज़ फस्तबिकुल खैरात नोट कर लीजिए। एक दूसरे के मुकाबले पे नेकियां करनी है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के नेकियां करनी है, ताकि आपकी मेरी जिंदगी करामत हो जाए। फिर इसके बाद आयत 149 से 150 में तहवीले किबला के हुक्म की तकरार है। चूंकि ये पहला मौका था नसख का, तो इस पर रिएक्शन बहुत था। जैसे एक चीज़ पे जब मुखालफत बहुत होती है तो फिर दूसरा बंदा भी बयान देता है, कभी प्रेस रिलीज आते हैं, कभी वो किसी और जगह। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में क्या कहा? वमिन हैसु खरज तफवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। चलिए, किबले की तब्दीली का हुक्म आ गया, तो कोई ये ना सोचे कि ये वन टाइम चीज़ थी। नहीं, जो जहाँ भी है, अब इसमें पूरी डिटेल्स हैं। हरम में रहने वाले भी अब उधर मुँह करेंगे, मक्का में रहने वाले भी उधर मुँह करेंगे, और इसी तरह से पूरी दुनिया के लोगों का किबला तब्दील हो गया। और इसमें जो पैगाम है वो बहुत खूबसूरत है कि फला तख्शौहुम वख्शौनी, लोगों से ना डरो, मुझसे डरा करो। वली उतिम नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमतें पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पाओ। यानी किबले की तब्दीली इत्माम नेमत थी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को ये नेमत दी और हम सबको बताया कि लोगों का डर छोड़ दो। आज भी हम बहुत सारे काम लोगों के डर से करते हैं, और लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक छीन लेता है। इस जुमले को नोट कर लीजिए और खुद से एक सवाल कीजिए, मैं लोगों से डरती हूँ? आप कहेंगे नहीं। और अगर मैं लोगों की डिस्क्रिप्शन दूँ ना, मैं बिरादरी से डरती हूँ, मैं खानदान से डरती हूँ, मैं माशरे से डरती हूँ, मैं ससुराल और समधियानों से डरती हूँ, तो आपको जवाब खुद भी मिल जाएगा।